नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने एक पोल ट्वीट किया है जिसमें ट्विटर यूजर्स से उन्हें सीईओ के रूप में पद छोड़ना चाहिए या नहीं के सवाल पर वोट करने के लिए कहा गया है। मस्क ने वादा किया है कि जो भी परिणाम होगा वो उसे पूरी तरह मानेंगे। दूसरी तरफ एलन मस्क पिछले कुछ समय से लगातार अपने परिवार के खतरे में होने की बात कह रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही एलन मस्क ने खुलासा किया था कि एक व्यक्ति ने उनके 2 साल के बेटे का पीछा किया है। ये मामला लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अब एलन मस्क की मां मे मस्क ने ट्वीट कर अपने बेटे के खतरे में होने की बात कही है। इटली की सुपर बाइक विनिर्माता कंपनी डुकाटी के मोटरसाइकिल के सभी मॉडल की कीमतें भारत में 1 जनवरी से बढ़ जाएंगी। कंपनी ने सोमवार को ये जानकारी दी। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि मूल्य वृद्धि कितनी होगी। डुकाटी इंडिया ने एक बयान में कहा कि उसकी मोटरसाइकिल की पूरी श्रृंखला के दाम 1 जनवरी 2023 से बढ़ जाएंगे। इसमें कहा गया कि लागत का भार कुछ समय से कंपनी स्वयं पर ले रही थी, लेकिन कच्ची सामग्री, उत्पादन और लॉजिस्टिक्स से संबंधित लागत में वृद्धि की वजह से उसे कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक पेट्रोकेमिकल मांग में होने वाली वृद्धि में 10% योगदान भारत का होगा। हालांकि देश में प्रति व्यक्ति खपत विकसित देशों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम है। तेल और गैस को दैनिक उपयोग की वस्तुएं, मसलन प्लास्टिक, उर्वरक, पैकेजिंग, कपड़ा, डिजिटल उपकरण, चिकित्सा उपकरण, डिटर्जेंट या टायर में बदलने में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोकेमिकल वैश्विक तेल खपत में बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक 2050 तक तेल की मांग में होने वाली वृद्धि में इनकी हिस्सेदारी आधी से अधिक होगी। पुरी ने यहां 7वें पेट्रोकेमिकल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, भारत में पेट्रोकेमिकल बाजार का मौजूदा आकार करीब 190 अरब डॉलर है, जबकि इनकी प्रति व्यक्ति खपत विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत कम है। ये अंतर मांग और निवेश अवसरों में वृद्धि के लिए जगह बनाएगा। सरकार तनावग्रस्त संपत्तियों की समाधान प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए दिवाला कानून में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि समाधान प्रक्रिया में देर होने से इन संपत्तियों के मूल्य में गिरावट आ सकती है, जिसे रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता में संशोधन प्रस्ताव को अगले साल की शुरुआत में संसद के बजट सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। IBC कानून को 2016 में तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान के लिए लागू किया गया था। कानून में संशोधन करने के लिए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का ये कदम विभिन्न पक्षों द्वारा जताई गई चिंताओं के बाद उठाया गया है। इन चिंताओं में कहा गया था कि कई कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएं मुकदमों और अन्य मुद्दों के कारण निर्धारित समय सीमा से अधिक समय ले रही है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि उसे उच्च रक्तचाप के इलाज और एंजाइना को नियंत्रित करने वाले अपने जेनेरिक निकाडिपाइन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से अंतिम मंजूरी मिल गई है। ग्लेनमार्क ने एक बयान में कहा, US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दी गई मंजूरी 20 मिलीग्राम और 30 मिलीग्राम की ताकत वाले बाइकार्डिपाइन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल के लिए है। ये कार्डिन कैप्सूल 20 मिलीग्राम और चिसी USA इंक के 30 मिलीग्राम का सामान्य संस्करण है। कंपनी ने कहा कि इन्हें अमेरिका में ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स इंक USA द्वारा वितरित किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों और व्यापार समुदायों समेत प्रत्येक हितधारक के लिए व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सीतारमण ने यहां कस्टम्स हाउस में नए कार्यालय वैगई की आधारशिला रखने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि व्यापार से जुड़ी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने पर सरकार काफी ध्यान दे रही है और इस दिशा में प्रगति भी देखी गई है। उन्होंने कहा कि नई इमारत के निर्माण के अलावा इन दिनों इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि इमारतों के बिजली की खपत कम करने वाला कैसे बनाया जाए। सीतारमण ने कहा, एक समय था जब हम सोचते थे कि हमें कार्यालय अधिकारियों, कर्मचारियों और ज़रूरतों को देखते हुए बनाने हैं। आजकल हम देखते हैं कि हमारी इमारतें कैसे हरित और ऊर्जा की कम खपत वाली बनेंगी। उन्होंने कहा, जब आज हम कार्यालय बनाते हैं तो आयात निर्यात एजेंट, महिला अधिकारियों और उनके बच्चों को भी ध्यान में रखते हैं। अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी के अगुवाई वाले रिलायंस समूह की तरफ से रोजमर्रा के उपभोग वाली वस्तुओं को इंडिपेंडेंस ब्रांड के तहत पेश किए जाने की घोषणा के साथ अब समूह का मुकाबला ITC, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड और अडानी विल्मर जैसे FMCG दिग्गजों से होगा। रिलायंस रिटेल ने बीते सप्ताह गुजरात में अपने FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस को पेश किया था। कंपनी ने इस ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर पर पेश करने की योजना बनाई है। इस ब्रांड को देश की प्रमुख खुदरा फर्म रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी एवं FMCG इकाई रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा पेश किया गया है। कंपनी ने बयान में कहा कि इंडिपेंडेंस ब्रांड के तहत कई श्रेणियों के उत्पादों की एक श्रृंखला पेश की जाएगी। इसमें रोजाना इस्तेमाल वाला अनाज, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुएं शामिल हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए iJanSatta.com पर नमस्कार।